श्लोक श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति रुदारत्व मोजः कांति समाधय। श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सौकुमार्य अर्थ व्यक्ति औदार्य ओज कांति समाधि। ये 10 गुण वैदर्भ मार्ग के प्राण बताए गए हैं। नाना प्रकार की शैलियों में से 2 वैदर्भ और गौणीय का ग्रहण करने के बाद आचार्य दंडी उन शैलियों के आधारभूत तत्व गुणों का विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। 41वें श्लोक में 10 गुणों के नाम बताकर 42वें में उन गुणों का प्रयोग करने वाले 2 मार्ग बताए हैं। दंडी के मत में काव्य की शोभा के हेतु सभी तत्व अलंकार हैं। प्रथम परिच्छेदोक्त श्लेषादि से भिन्न उपमा यमक आदि को उन्होंने साधारण उभय मार्ग स्वीकृत अलंकार बताया है। इससे यह पर्यवसित होता है कि श्लेषादि गुण विशेष अलंकार हैं। श्लोक इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणाः स्मृताः एषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौण वर्तमनि। ये 10 गुण वैदर्भ मार्ग के प्राण बताए गए हैं। गौण मार्ग में इनकी आमतौर पर विपरीतता देखी जाती है। श्लेष आदि 10 गुण वैदर्भ मार्ग में प्राण के समान प्रिय तत्व हैं, अर्थात इस मार्ग की रचना में विषय की अनुकूलता से 10 गुणों का उपादान हो सकता है। वामन ने भी वैदर्भ को समग्र गुणा बताया है। उनके मत से वैदर्भी रीति गुणों के साकल्य के कारण ही अन्य रीतियों की अपेक्षा ग्राह्य है। वैदर्भ मार्ग या रीति में 10 गुण होने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसकी रचना में एक साथ 10 गुण होने चाहिए, अपितु इसका तात्पर्य यही है कि वैदर्भ मार्ग में रचना की समाई तथा विषय की आवश्यकता के अनुसार सभी गुणों का समावेश हो सकता है, जबकि अन्य गौणी या पंचाली आदि रीतियों में इसमें से कुछ गुणों का उपादान होता है तो अन्य बहुतों सा का विपर्यय होता है। दंडी के अनुसार विपर्यय अधिक है। श्लेष प्रसाद समता सुकुमारता एवं कांति गुण तो गौण मार्ग में बिल्कुल नहीं अपनाए जाते। इन गुणों में जो विशेषता अभिष्ट होती है उससे विपरीत प्रकार की अभिव्यक्ति गौण मार्ग में अच्छी समझी जाती है। गौणी मार्ग में 6 माधुर्य भी वैदर्भ मार्ग के माधुर्य से किंचित भिन्न ही माना जाता है। औदार्य के प्रयोग में भी वैदर्भ और गौण मार्गों में श्लाघ्य विशेषणों के प्रयोग को लेकर मतभेद है। ओज का प्रयोग वैदर्भ मार्ग में गद्य का तो प्राण ही माना जाता है, किंतु पद में औचित्य होने पर ही ग्राह्य है, जबकि गौण मार्ग में वह सब प्रकार के काव्य बंधों का प्राण माना जाता है। अर्थ व्यक्ति और 10 समाधि गुणों के बारे में दोनों मार्गों में एक मत है। वामन के मत में गौड़िया रीति में वामनाभिष्ट ओजह और कांति गुण व्यावर्तक धर्म है। इनकी इस मार्ग में प्रचुरता अभिष्ट है तथा उनके अनुकूल अन्य अनुल्व गुणों का समावेश भी इष्ट है। इस रीति में माधुर्य और सौकुमार्य सह्य नहीं है, जबकि पांचाली रीति का ये प्राण है और तदनुकूल अन्य गुण शोभा कारक माने जाते हैं। ओजम और कांति इस रीति में अग्राह्य हैं। दंडी के अनुसार गुणों से काव्य में रस का निषेक होता है, जिससे काव्य हृदय बनता है। इसके विपरीत दोष से हृदय को वैरस्य की प्रतीति होती है, जिससे उसे उद्वेग होता है। इससे सिद्ध होता है कि उनके मत में गुण और दोष में विरोध है। दंडी के अनुसार बंध का शैथिल्य वैषम्य तथा पारुष्य दुष्प्रतीति ग्राम्यता नयार्थता आकुलता लोक विरोध तथा लोक सीमाति क्रमण दोषों का परिहार। श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्ति ओज कांति और समाधि गुणों के लिए आवश्यक हैं, अर्थात दोषों का विपर्यय गुण है। भरत के अनुसार अलंकारों और गुणों का समावेश काव्य के 36 लक्षणों में प्रथम भूषण में होता है, अर्थात अलंकारों का आधार सादृश्य है। सादृश्य से वैधर्म भी उपलक्षित है। यह सादृश्य स्फुष्ट अंतरलीन या व्यंग्य हो सकता है। इससे साधर्म कथन के अन्य प्रकार भी उपलक्षित हैं। इसी बात को मन में रखकर भरत ने उपमा रूपक और दीपक अलंकारों का वर्णन किया है। शब्द अलंकारों का आधार उच्चार्यमाण ध्वनियों की आवृत्ति होती है। उनके प्रतिनिधि के रूप में भरत ने यमक का वर्णन किया है। दोषों के विपर्यय वाली वह अभिव्यक्ति गुण कहती है जिसमें माधुर्य और ओजस लक्षित करने योग्य अर्थात विशिष्ट हों। ये गुण 10 हैं। दंडी ने अपने विवेचन का आधार भरत को बनाया है। उन्होंने 10 गुणों के नाम नाट्य शास्त्र से ज्यों के त्यों अपना लिए हैं। गुणों और अलंकारों को एक अलंकार नाम भी भरत के विभूषण नाम से प्रेरणा लेकर किया प्रतीत होता है। दोषों का विपर्य गुण है यह मानकर भी भरत का ही अनुसरण किया गया है। माधुर्य प्रधान वैदर्भ और ओज प्रधान गौणी मार्गों को मानने का आधार भी भरत द्वारा माधुर्य और ओजस को विशेष महत्व दिया जाना है। भामह ने गुणों के कारण काव्य की उपादेयता तो मानी है, परंतु उनका विशेष विवेचन नहीं किया है, केवल माधुर्य प्रसाद और ओजस का चलता सा विवरण दिया है। इन तीनों में उन्हें माधुर्य विशेष रूप से और प्रसाद उसकी अपेक्षा कम प्रिय है, ओजस से उन्हें अरुचि है। यह पूर्वोक्त दो के चाहने वालों को सुमेधस और ओज के चाहने वालों को अनिरुक्त वाचक सर्वनाम केचित कहने से तो सूचित होता ही है। ओजस का लक्षण न देने से सर्वनाम केचित कहने से तो सूचित होता ही है, ओजस का लक्षण न देने से भी सूचित होता है। परंतु भरत से प्रारब्ध दश गुण सरिताओं का भामहोक्त गुणत्रयी में समाहार आनंद वर्धनादि आचार्यों को विशेष प्रिय रहा। अग्निपुराण में गुणों पर विचार को और परिष्कृत किया गया है। गुण काव्य शरीर का आंतरिक लालित्य है, जबकि अलंकार उस पूर्वतः लालित्य युक्त काव्य शरीर की शोभा हार आदि के तुल्य बढ़ाते हैं। दोषों का अभाव ही गुण होता है, इस मान्यता के वे विरोधी हैं। वे गुणों और दोषों को पृथक मानते हैं। भरत और दंडी के वृद्धिस्थ गुण लक्षण को उन्होंने यो मुखरित किया है, जो काव्य में अतिशय शोभा को अनुग्रहित करता है वह गुण है। उसके उन्होंने सामान्य और वैशेषिक दो भेद किए। सामान्य गुण के तीन भेद होते हैं, शब्दगत, अर्थगत और उभयगत। शब्दगत गुण 7 हैं, अर्थगत और उभयगत 6-6 हैं। वैशेषिक गुण स्वलक्षण गोचर हैं। ओज का गुण विवेचन बहुत कुछ अग्निपुराण के विवेचन से प्रभावित है। वामन ने भरत दंडी और अग्निपुराण की मान्यताओं के विपरीत गुणों का विपर्य दोष बताया है, किंतु वे अपनी इस स्थान पर टिके नहीं हैं। उन्होंने दोषों के लक्षण में किसी गुण का विपर्य कोई दोष नहीं बताया, जबकि गुणों के लक्षणों में मार्ग भेद जरठत्व वैषम्य पारुष्य ग्राम्यत्व दोषों के विपर्य में क्रमशः शब्दगत समता सौकुमार्य गुण और अर्थगत समता सौकुमार्य औदार्य गुण बताए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हृदय से वे भरत के दोषों का विपर्य गुण होता है, सिद्धांत को ही मानते हैं। गुणों की संख्या यद्यपि भरत और दंडी के समान 10 ही मानी है, तथापि उन्हें नित्य बताकर इनके सबके बंध गुण और अर्थ गुण दो स्वरूप बताए हैं। इन उभयगत गुणों से युक्त पद रचना को रीति नाम देकर उसे काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताया है, तथा उसके तीन भेद किए हैं। दंडी ने गुणों के विवरण में गौणों के लिए अपरे केचित सर्वनामों का प्रयोग किया है, जो संस्कृत ग्रंथों में प्रायः अरुचि का सूचक माना जाता है, अतः गौण मार्ग उन्हें रुचिकर नहीं लगता। भामह को भी गौणाभिमत ओजस बहुत प्रिय नहीं है, यह हम पीछे देख चुके हैं। यूं भामह मार्ग भेद कथन के तथा वैदर्भ मार्ग की श्रेष्ठता के विरोधी हैं। वामन ने तो स्पष्टतः वैदर्भी को ग्राह्य बताया है, यह भी पीछे कहा जा चुका है। भरत को भी माधुर्य विशेष प्रिय है, यह तीन बातों से सूचित होता है। माधुर्य उदार्य लक्षण के माधुर्य के पूर्व प्रयोग से चतुर्विध प्रवृत्तियों में केवल दाक्षिणात्य का विवरण देने से नाटक के लिए मृदुल ललित पदार्ढ़ गूढ़ शब्दार्थ हीनम जनपद सुखबोध्यम विशेषणों के प्रयोग से भरत के अनुसार श्लेष आदि गुण गुणार्थ आदि 10 दोषों के विपर्य से आते हैं। दस दोषों में गुणार्थ अर्थांतर अर्थहीन भिन्नार्थ एकार्थ अभिप्लुतार्थ न्यायहीन स्पष्टतः अर्थ दोष है, अतः इनके विपर्य से संभूत गुण अर्थ गुण ही होंगे। विषम विसंधि एवं शब्द च्युत स्पष्टतः शब्द दोष है, अतः इनके विपर्य से संभूत गुण शब्द गुण होंगे। ऐसी स्थिति में अभिनव गुप्त द्वारा भरत के श्लेष आदि गुणों को युगपद अर्थ गुण और शब्द गुणों के रूप में व्याख्या किया जाना वामनाचार्य की भक्ति ही प्रतीत होती है। दंडी के 10 गुणों से श्लेष समता सुकुमारता ओजस शब्द गुण प्रसाद अर्थ व्यक्ति उदारता कांति और समाधि अर्थ गुण है, माधुर्य उभय गुण है। श्लोक श्लिष्टम स्पृष्ट शैथिल्यम अल्प प्राणाक्षरोत्तरम शिथिलम मालती माला लोलाली कलिला यथा। शिथिलता के स्पर्श से रहित श्लेष गुण से युक्त अल्प प्राण अक्षरों की अधिकता वाला शिथिल जैसे मालती माला लोलाली कलिला। अनुप्रास समझकर वह मालती माला में शिथिल प्रयोग गौणों को इष्ट है। दस गुणों के आधार पर दो मार्ग बताने के बाद अब दंडी उन गुणों का लक्षण उदाहरण तथा दोनों मार्गों में उनकी स्थिति बताते हुए विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। श्लेष यह शब्द गुण है जो काव्यबंध शिथिलता दोषों से छुआ हुआ भी नहीं रहता, उसे श्लेष नामक गुण से युक्त कहते हैं। रचना में शिथिलता दोष का अभाव होने पर श्लेष गुण बनता है, अर्थात श्लेष गुण में वर्णों की कसावट अपेक्षित होती है। शैथिल्य दोष क वर्गादि पांच वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा यर ल व अक्षर अल्पप्राण नामक बाह्य प्रयत्न से निवृत्त होने के कारण अल्पप्राण कहते हैं। पद या गद्य में निबद्ध रचना में इन अक्षरों की अधिकता होना बंध की शिथिलता है, इससे उच्चारण में कसावट नहीं रहती। जैसे मालती माला लोलाली कलिला प्रयोग में महाप्राण अक्षर एक भी नहीं है, अतः यह बंध ढीला है, इसके अक्षर परस्पर गुथे हुए नहीं है, इसलिए यह श्लेष गुण के विपरीत शैथिल्य दोष से युक्त है। श्लोक अनुप्रास धिया गौणस्तदिष्टम बंध गौरवात् वैदर्भैर मालती दाम लंघितम भ्रमरैर इति। रचना के गौरव के कारण वैदर्भों को मालती दाम लंघितम भ्रमरैः इष्ट है। श्लेष का विपर्य अल्पप्राण अक्षरों की अधिकता वाला शिथिल प्रयोग गौणों को इष्ट है, क्योंकि वे इस प्रकार के प्रयोग में अनुप्रास समझते हैं। श्लेष का उदाहरण वैदर्भ मार्ग के लोग श्लेष गुण से बंध रचना में गौरव वजन श्रेष्ठता मानते हैं। जैसे मालती दाम लंघितम भ्रमरैः बंध में अल्पप्राण अक्षरों के होते हुए भी बीच में महाप्राण वर्ण घ और भ के तथा संयुक्त व्यंजन के आने से ढीलापन नहीं रहा, कसाव आ गया है, अतः यह बंध श्लेष से युक्त होने से गौरवान्वित हो गया है। वैदर्भ मार्ग में शैथिल्य श्लेष का गुण का विरोधी है, किंतु गौण मार्ग में वर्णावृत्ति रूप अनुप्रास चाहे शिथिलता भी लाए माधुर्य गुणकारक माना जाता है, अतः मालती माला लोलाली कलिला बंध अल्पप्राण वर्णों की आवृत्ति से संभूत अनुप्रास के कारण उनके यहाँ माधुर्य से युक्त हैं, अतः इष्ट हैं। वैदर्भ मार्ग में माधुर्य के लिए श्रुत्यानुप्रास अभिष्ट होता है, अतः मालती माला उदाहरण वैदर्भ मार्ग में शैथिल्य दोष से युक्त ही है, किसी गुण से नहीं। भरत ने श्लेष गुण का लक्षण योग किया है। इप्सित अर्थ के द्वारा परस्पर संबद्ध पदों की जो श्लिष्टता होती है वह श्लेष कहता है, जो विचार से गंभीर हो तथा स्वभाव से स्फुष्ट हो और स्वतः सुप्रतिबद्ध सुगठित हो वह श्लिष्ट कहता है। इन कथनों में अर्थ की कसावट स्पष्टतः अभिष्ट प्रतीत होती है, शब्द की कसावट नहीं। अग्निपुराण में श्लेष को शब्द गुण बताकर उसका लक्षण यह दिया है, शब्दों का सुगठित सन्निवेश श्लेष कहा जाता है। इस विषय में वामन का चिंतन भिन्न है, शब्दों की कसावट को उन्होंने तीन गुणों के माध्यम से माना है। श्लेष संधि के कारण अनेक पदों का एक पद के समान मसृण प्रतीत होना शब्दगत श्लेष है। इसका विपर्य विसंधि नामक वाक्य दोष का विश्लेष नामक भेद है। इससे स्पष्ट है कि दंडी के श्लेष से वामन के श्लेष का कोई साम्य नहीं है। ओज वामन ने बंध की गाढ़ता को शब्दगत ओज और प्रसाद गाढ़त्व मिश्रित शिथिलता को शब्दगत प्रसाद बताया है। उन्होंने गाढ़त्व की व्याख्या नहीं की है, किंतु उनके ओज के उदाहरण और प्रत्युदाहरण में लगभग वैसा ही अंतर है जैसा दंडी के श्लेष के उदाहरण है और प्रत्युदाहरण में है। वामनानुयायी अभिनव ने गाढ़ता की व्याख्या समास बाहुल्य के अतिरिक्त बंधन के कारण वर्णों की परस्पर सापेक्षता की है। त्रिपुर हर भूपाल ने संयुक्ताक्षरता विसर्ग उसके रूपांतर जीवामूली और उपमानीय दीर्घांता और समासों को तारतम्य से हेतु माना है। संयुक्ताक्षर होने रेफ से परवर्ती व्यंजन के वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों के तृतीय और चतुर्थ वर्णों के और प्रथम एवं तृतीय से संयोग माने हैं। विसर्ग संभवतः अनुस्वार का भी उपलक्षक है और अनुस्वार से नासिक के वर्णों से संयोग भी उपलक्षित है। इस विवरण से स्पष्ट है कि अग्निपुराण का सुश्लिष्ट सन्निवेशत्व वामन का गाढ़ बंधत्व दंडी के अस्पृष्ट शैथिल्यत्व से भिन्न है, किंतु दंडी ने शिथिलता को अल्पप्राण अक्षरों की अधिकता में सीमित करके संभवतः सम्यक्तया प्रकट नहीं किया। उनके श्लेष के उदाहरण में भी तो अल्प प्राण अक्षरों की ही अधिकता है। महाप्राण अक्षर तो केवल दो, घ और भ, एक एक बार ही प्रयुक्त हुए हैं। यह ठीक है कि शिथिलता का उदाहरण मालतीमाला, लोलाली, कलीला बिना बटे धागों की गुच्छी के समान ढीले बंध वाला है, पर श्लेष के उदाहरण में भी कसावट अल्प प्राण वर्णों के साथ महाप्राण वर्णों के प्रयोग के अलावा न केवल घी और तम्भ्र के संयोग से आई है, अपितु शिथिल के उदाहरण में निरंतर दीर्घ स्वरों के प्रयोग के विपरीत ह्रस्व गुरु और दीर्घ स्वरों के मिले जुले प्रयोग से भी आई है। मा दीर्घ ल ह्रस्व ती दीर्घ दा दीर्घ म ह्रस्व ल गुरु घी ह्रस्व त गुरु भ्र ह्रस्व म ह्रस्व रह दीर्घ अंत में विसर्ग ने तो जैसे इस कसावट को गांठ ही लगा दी है। क्रमदेश्वर ने दंडी के लक्षण को स्पष्ट करते हुए इसका उदाहरण महाप्राण वर्णों से युक्त अल्प प्राण वर्णों की अधिकता के अलावा संयुक्त वर्णों वाला दिया है। उदाहरण में यहाँ भी अल्प प्राण अक्षर अधिक है, बीच बीच में महाप्राण तो है ही, स्वर भी लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु हैं, अंत में दंडी के उदाहरण के समान विसर्ग भी है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में बंध की कसावट को मुख्यता देने वाले गुणों का अंतर्भाव ओजस में उचित ही किया है। श्लोक प्रसादवत प्रसिद्धार्थम इंदिरो रिंदवर द्विति लक्ष्म लक्ष्मीन तनोतीति प्रतीति सुभगम वचः। प्रसिद्ध अर्थ वाला कथन प्रसाद से युक्त होता है। इंदु का इंदिवर की द्विति के समान द्विति वाला लक्ष्म चिन्ह लक्ष्मी का तनन विस्तार करता है। यह कथन समझे जाने से मनोहर है। श्लेष नामक शब्द गुण को बताने के बाद आचार्य दंडी ने दो श्लोकों में प्रसाद नामक अर्थ गुण की व्याख्या की है। 45वें श्लोक में उन्होंने इसका लक्षण और उदाहरण दिए हैं। लोक में प्रसिद्ध वाक्यार्थ वाले पदों का प्रयोग करने से प्रसाद नामक गुण होता है और प्रसिद्ध शब्द शास्त्र मात्र में प्रोक्त अर्थों में शब्दों का प्रयोग इस गुण का विरोधी है। इंदोर इंदी वर्द्युति लक्ष्म लक्ष्मी तनोति पद्यबंध में सभी पद्य संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्धार्थक पद हैं। इंदोह चंद्र का इंदिवर, नील कमल द्विति कांति लक्ष्म चिन्ह लक्ष्मी शोभा को तनोति बढ़ाता है। इंदिवर द्विति में इंदिवर सेव द्वितीयस्य तत् विग्रह में बहुव्रीही समास भी सुप्रसिद्ध है, अतः यह कथन झटित अर्थ प्रतीति के कारण सुंदर है। पद प्रयोग की इस सौंदर्य की जनक विशेषता को प्रसाद गुण कहते हैं। दंडी का यह लक्षण भरत के निम्न कथन का संक्षेप ही प्रतीत होता है। जहाँ शब्द से विद्वानों द्वारा व्याख्या नहीं किया हुआ भी अर्थ मुख में शब्द और अर्थ के संयोग के होते ही अर्थात झटित प्रतीत हो जाता है, वहाँ प्रसाद गुण बताया जाता है। अग्निपुराण में इसे शब्दार्थो भय गुणों में दिया है। वामन ने गाढ़त्व मिश्र शैथिल्य को प्रसाद नामक शब्द गुण बताया है। विवक्षित अर्थ को प्रकट करने वाले पदों के ही प्रयोग से अर्थ में जो विमलता आती है वह अर्थगत प्रसाद है। वामन का सुगमता लभ्य समता अर्थ गुण दंडी के प्रसाद के निकट है। इस समता का विपर्य क्लिष्टत्व दोष है। प्रसाद गुण का यह स्वरूप परवर्ती काव्य शास्त्रियों को स्वीकृत है। दंडी के उदाहरण पर कालिदास के मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति की छाया है। भारवी ने प्रसाद गुण युक्त काव्य की रचना पूर्ण कर्मों के बिना असंभव मानकर प्रसाद का महत्व स्पष्ट किया है।